सिद्धेर्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं जयैधवलङ्गते णाऊरियसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अनञ्जनो नामो चन्दो। यह श्री भीषण आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ऊपर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। प्रथम अधिकार जो पेज दोष विहत्य अधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 131 पर आ गए हैं, 131। यहाँ हम 14 पूर्वों की बात देख रहे थे। पहला हमने उत्पाद पूर्व देखा, दूसरा अग्रायणी पूर्व, तीसरा वीर्यानुप्रवाद पूर्व 128 से शुरू हुआ था, चौथा अस्थि नास्ति प्रवाद नाम का पूर्व, पांचवा ज्ञान प्रवाद, छठा सत्य प्रवाद, सातवा आत्म प्रवाद, आठवा कर्म प्रवाद और ये नौवा अभी हम पढ़ेंगे, प्रत्याख्यान प्रवाद। 131 पृष्ठ पर 109 नंबर जो लिखा है वहां से शुरू करते हैं कि प्रत्याख्यान प्रवाद नाम का पूर्व, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से अनेक प्रकार के परिमित काल और अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यान का वर्णन करता है। प्रत्याख्याने युत त्याग जो है उसका विशेषार्थ बताते हैं। मोक्ष के इच्छुक व्रति द्वारा, ये महाव्रतियों को व्रति कहा है यहाँ पर, रत्नत्रय के विरोधी नामादि का मन वचन और काय पूर्वक त्याग किया जाना प्रत्याख्यान कहलाता है। वचन हुआ, वचन करना उसको। क्या कहते हैं, रत्नत्रय के विरोधी ऐसे जो कोई ये सब लेना, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव वगैरह वगैरह, इनका मन से वचन से और काया से त्याग करना प्रत्याख्यान कहलाता है। यह प्रत्याख्यान नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से छह प्रकार का है। जो नाम पाप के कारणभूत है और रत्नत्रय के विरोधी है, उन्हें स्वयं नहीं रखना चाहिए और न दूसरे से रखवाना चाहिए, तथा कोई रखता हो तो सम्मति नहीं देनी चाहिए। यह सब नाम प्रत्याख्यान है। अथवा प्रत्याख्यान यह शब्द नाम प्रत्याख्यान कहलाता है। जो पापबंध की कारण हो और मिथ्यात्व आदि के बढ़ाने वाली हो, ऐसी अपरमार्थ रूप देवता आदि की स्थापना, यानी अन्य मति के जो माने हुए देवताएं हैं उनकी स्थापना, और पाप के कारणभूत द्रव्य के आकारों की रचना न करना चाहिए, न कराना चाहिए, तथा यदि कोई करता हो तो सम्मति नहीं देनी चाहिए, यह सब स्थापना प्रत्याख्यान है। अथवा ये सब जगह ब ब कैसा आया इनको, व के बदले ब आ जाता है। अथवा प्रत्याख्यान, ये समझ में आ रहे हैं ना, आसान है। ऐसे अन्य देवताओं की स्थापना न करना न कराना न उसमें अनुमति देना है, और ऐसे भी अन्य भी जो कोई आकार हो जिससे तो अन्य मत की पुष्टि होती हो, पाप की पुष्टि होती हो, ऐसे आकारों की भी रचना नहीं करनी चाहिए। अथवा प्रत्याख्यान रूप से परिणत हुए जीव की तदाकार और अतदाकार रूप स्थापना करना स्थापना प्रत्याख्यान है। पापबंध का कारणभूत जो द्रव्य सावध्य हो अथवा निरवध्य होते हुए भी जिसका तप के लिए त्याग किया हो उसे न तो स्वयं ग्रहण करे न दूसरे को ग्रहण करने के लिए प्रेरणा करे तथा यदि कोई ग्रहण करता हो तो उसे सम्मति न दे। इन पाप बंध का कारणभूत जो द्रव्य सावध्य हो, अभी हम ऐसा अपने पर घटाते हैं ना, जैसे किसी ने मांस भक्षण का तो त्याग है, हमें अभी आलू प्याज आदि कंदमूल का भी त्याग किया है, तो ये पाप बंध के कारणभूत द्रव्य जो है उसका त्याग किया है तो उसका स्वयं तो नहीं ग्रहण करते। हाँ, तो हम स्वयं तो नहीं ग्रहण करते, न दूसरे को ग्रहण करने के लिए प्रेरणा करे, और तीसरे यदि कोई ग्रहण करता हो तो उसे सम्मति न दे। हम तो स्वयं नहीं खाते, बच्चों को बना बना कर खिलाते हैं, तो ये भी वैसा ही पाप है। न खाना है न खिलाना है और न अन्य को अनुमोदना देना है, यह सब द्रव्य प्रत्याख्यान है। अथवा ये व्रतियों ने जो व्रत धारण किए हैं उसके बारे में जो ये प्रत्याख्यान, ये जो सब 14 के 14 प्रकीर्णक मुख्यतः तो मुनियों की बात है, परंतु ये जो उसका स्वरूप बताया जाता है तो श्रावकों पर भी लागू होगा ना, वही वही जो न्याय तो वही होगा सर्वत्र। अथवा आगम और नो आगम के भेद से द्रव्य प्रत्याख्यान अनेक प्रकार का समझना चाहिए। जैसे हमेशा हम किसी भी बात पर द्रव्य में आगम फिर नो आगम, आगम यानी प्रत्याख्यान संबंधी जानकार जो जीव है जिसका उपयोग उसमें नहीं है उस जीव को द्रव्य आगम प्रत्याख्यान कहेंगे, और नो आगम में उसके शरीर को कहेंगे, वो जो जीव है वो भविष्य में करने वाला है उसको कहेंगे, और इनके अलावा अन्य भी चीजों को करेंगे। अथवा नहीं, वो हो गया, अथवा हो गया। असंयम के कारणभूत अभी क्षेत्र प्रत्याख्यान को बोल रहे हैं, असंयम के कारणभूत क्षेत्र का त्याग करना क्षेत्र प्रत्याख्यान कहलाता है। जिस क्षेत्र में संयम का नाश हो जावे ऐसे क्षेत्र में उसका त्याग करना, वहां नहीं जाना। अथवा प्रत्याख्यान को धारण करने वाले व्रती ने जिस क्षेत्र का सेवन किया हो उस क्षेत्र में प्रवेश करना क्षेत्र प्रत्याख्यान है। दोनों ओर से इसको समझाया है। असंयम आदि के कारणभूत काल का त्याग करना काल प्रत्याख्यान कहलाता है। जैसे रात्रि में गमन नहीं करना, जिस काल में वहां जीवों की उत्पत्ति होती हो उस काल का भी त्याग करना विशिष्ट के लिए। अथवा प्रत्याख्यान से परिणत हुए जीव के द्वारा सेवित काल काल प्रत्याख्यान कहलाता है। अब भाव प्रत्याख्यान बताएंगे। मिथ्यात्व असंयम और कषाय आदि का त्याग करना भाव प्रत्याख्यान कहलाता है। अथवा आगम और नो आगम के भेद से भाव प्रत्याख्यान अनेक प्रकार का समझना चाहिए। जैसे हम भाव निक्षेप लगाते हैं, आगम भाव निक्षेप कैसे लगेगा? हाँ, नहीं वो उपयोग रूप नहीं, वो द्रव्य आगम में, ये भाव आगम में लगाना है। यानी प्रत्याख्यान पूर्व संबंधी जानकार जीव और वर्तमान में उसी में उपयोग है उसको भाव आगम प्रत्याख्यान कहेंगे। अच्छा देखो, आगम नो आगम क्या कहते हैं, ये निक्षेप है। निक्षेप अभी किसी भी चीज की हमें अभी चर्चा कर रहे हैं हम, तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि निक्षेप लगाते हैं। या मिनिमम तो नाम स्थापना द्रव्य और भाव इतने तो निक्षेप लगेगे ही लगेगे। नाम और स्थापना समझ में आ गए आपके। अब द्रव्य निक्षेप जो लगाते हैं उसमें दो भेद करते हैं, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम यानी जो परंपरा से चले आए हुए जो शास्त्र है ग्रंथ हो उसको यहाँ आगम कहा है। तो उस आगम को जानने वाले जीव को उस जीव में वो निक्षेप किया जाता है, किसका? आगम का। तो उस जीव को द्रव्य आगम कहा जाता है। अभी यहां हमारी प्रत्याख्यान की बात चल रही है, अभी सम्यक्त्व संबंधी चर्चा चल रही हो तो सम्यक्त्व संबंधी जो अनुयोग है उसको बताने वाले, उसको जानने वाला जीव, या हम समयसार की बात करेंगे तो समयसार, हम जीव को समयसार कहेंगे। कैसे? समयसार शास्त्र को जानने वाला जीव जिसका उपयोग उसमें नहीं है अभी वर्तमान में, उसको हम क्या कहेंगे? आगम द्रव्य समयसार उस जीव को। और नो आगम में कैसे घटित करेंगे? उस जीव के शरीर को कहेंगे, या वो भविष्यकाल में उसको कहेंगे। ये तो बहुत बार चर्चा हुई ना अपनी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये भाव प्रत्याख्यान में भी, एक तो मिथ्यात्व असंयम आदि का त्याग करना, उसको भी भाव प्रत्याख्यान कहेंगे, और दूसरी ओर से आगम और नो आगम के भेद से भी भाव प्रत्याख्यान बताया जाएगा। 132 पृष्ठ, पेजेस वही हो गए शायद, है ना? देखो जरा, जो जीव संयमी है उसे प्रत्याख्यापक समझना चाहिए, प्रत्याख्यान करने वाला वो प्रत्याख्यापक। अशुभ नामादि के त्याग रूप परिणाम प्रत्याख्यान समझना चाहिए, और सचित्तादि द्रव्य प्रत्याख्यातव्य समझना चाहिए। यानी परिणाम को प्रत्याख्यान कहा, जो सावध्य का त्याग किया ना, प्रत्याख्यान किया, तो ये परिणाम है जीव का, वो प्रत्याख्यान हुआ। और जिस द्रव्य का त्याग किया है उसको प्रत्याख्यातव्य कहा, क्योंकि सचित्तादि द्रव्यों का त्याग किया है, तो जिन द्रव्यों का त्याग किया है, हम कहते हैं ना त्याज्य, त्याग किसको कहेंगे? परिणाम को। और त्याज्य जो द्रव्य त्यागा है उसको हम त्याज्य कहेंगे। अभी त्याग के बदले यहाँ प्रत्याख्यान शब्द यूज करना है। प्रत्याख्यान ये परिणाम है, और प्रत्याख्यातव्य जिन द्रव्यों का त्याग किया है उन द्रव्यों को कहते हैं। और जो करने वाला जीव उसको क्या कहा था अभी अभी हमने? प्रत्याख्यापक, इसे व्यवस्थापक कहते हैं ना, व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक, तो ये प्रत्याख्यान करने वाला प्रत्याख्यापक। इत्यादि रूप से नियत काल और अनियत काल रूप प्रत्याख्यान का वर्णन प्रत्याख्यान प्रवाद नाम के पूर्व में किया गया है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, निश्चित समय तक वो त्याग करना उसको नियत काल कहेंगे। विद्यानुप्रवाद, ये 10 नंबर का है। विद्यानुप्रवाद नाम का पूर्व अंगुष्ठ प्रसेना आदि 700 मंत्र अर्थात अल्प विद्याओं का, और रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का, तथा उन विद्याओं के साधन करने की विधि का, और सिद्ध हुई उन विद्याओं के फल का वर्णन करता है। ये लघु विद्याएं जो कुछ होती है, और रोहिणी वगैरह महाविद्याएं कहलाती है, उनका इसमें मंत्र तंत्र आदि जो कोई है उसका वर्णन है। 11 नंबर, कल्याण प्रवाद नाम का पूर्व ग्रह नक्षत्र चंद्र और सूर्य के 4 क्षेत्र का। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से है? 4 क्षेत्र किसको कहते? 4 क्षेत्र, 4 यानी 1 2 3 4, 4 ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो क्या अर्थ है उसका? हाँ देखो, हम संचार शब्द तो सुना है ना हमने, संचार करते हैं क्या, घूमते हैं ना, ये 4 करना है, 4 है ना उसका भ्रमण। हाँ, और जो जिस रूट से जाते हैं उसको वीथियां कहलाते हैं। हाँ, रूट रूट उनके जो ना हमने वीथी, तो वो चेंज होती रहती है सूर्य की और चंद्र की भी। तो ग्रह नक्षत्र चंद्र और सूर्य के 4 क्षेत्र का, यानी उसके भ्रमण क्षेत्र का, अष्टांग महानिमित्त का, ये आठ प्रकार के निमित्त ज्ञान कहलाते हैं, उसको अष्टांग निमित्त कहते हैं। तथा तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव और नारायण आदि के कल्याणकों का वर्णन करता है। ये नारायण के भी कल्याण के लिए विशेषार्थ, चार का अर्थ गमन है, लिखा है देखो यहाँ। जिस क्षेत्र में सूर्यादि गमन करते हैं, सूर्यादि में सूर्य चंद्र नक्षत्र सबको लेना, ग्रह नक्षत्र वगैरह, उसे चार क्षेत्र कहते हैं। सूर्य और चंद्र को छोड़कर शेष नक्षत्र आदि मेरु पर्वत से चारों ओर 1121 योजन छोड़कर, यानी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं वो, तो उसके नजदीक नहीं है, 1121 योजन छोड़कर शेष जम्बूद्वीप, ये जम्बू हुआ, जम्बूद्वीप मेरु पर्वत के सेंटर से जम्बूद्वीप के आउटर डायमीटर कितनी दूर होगी? मेरु पर्वत के सेंटर से अभी यहां कहा ना 1121 योजन छोड़कर मेरु पर्वत से चारों ओर, अभी उसके आउटर ले लेना 1125 योजन, 21 योजन छोड़कर, तो वहां शेष जम्बूद्वीप कितना बाकी है? अभी मेरू से जम्बूद्वीप कितना है उसके आउटर डायमीटर, जम्बूद्वीप के आउट 500,000, आप किसको बोल रहे हैं? मैंने मानुषोत्तर नहीं पूछा, मैंने मनुष्य क्षेत्र नहीं पूछा है, मैंने जम्बूद्वीप कहा। जम्बूद्वीप 100,000 योजन है, तो सेंटर से सभी ओर कितना होगा? 50,000 योजन, उतना ही मेरा प्रश्न है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेंटर से 50,000 योजन है ना किसी, यानी इसलिए कहा शेष जम्बूद्वीप। मेरु पर्वत से 1121 योजन छोड़कर अभी जम्बूद्वीप बाकी है ना, 50,000 योजन में से जितना कुछ बाकी है शेष, उतना वहां पर है। शेष जम्बूद्वीप और लवण समुद्र में, लवण समुद्र में भी हो गए, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए परिभ्रमण करते हैं। सूर्य और चंद्र का चार क्षेत्र 510 सही 48/61, 510 सही यानी 510 पूर्णांक, ये फुल फिगर है, और 48/61 यानी 48/61 जो हम मराठी में कहते हैं, 48/61, ये जो ऐसा लिखा है, इतने योजन हैं। इसमें से 180 योजन जम्बूद्वीप में और शेष लवण समुद्र में है। रेडियस 50,000 है, हाँ नहीं उसके क्या नहीं, सेंटर से 1121 छोड़कर, हाँ उतने ही नहीं, वहां से लेकर उसके अंदर कोई नहीं घूमते, उसके बाहर सभी है। बाहर कहाँ है? बाहर तो लास्ट तक है, स्वयंभू रमण समुद्र तक है सब, परंतु यहाँ इतनी बातें बतानी है कि इतना छोड़कर ये घूमने वाले कहाँ है, तो ढाई द्वीप में ही है, इसलिए यहाँ तो केवल जम्बूद्वीप और लवण समुद्र की ही बात बताई है, आगे कितने हैं नहीं है उसकी बात यहाँ नहीं बताई है। वो सूर्य और चंद्र की है, और कौन से चंद्र? सूर्य अपने मेरु यानी जम्बूद्वीप वाले सूर्य चंद्र, क्योंकि हर एक समुद्र के और द्वीप के सूर्य चंद्र अलग अलग है, तो जम्बूद्वीप के जो चंद्र और सूर्य है उनका भ्रमण क्षेत्र कैसा है? तो ये जो जम्बूद्वीप तो 100,000 योजन वाला है, ये मेरु वाला सेंटर, ये जम्बूद्वीप है। अब सूर्य और चंद्र का भ्रमण कैसा है? तो आउटर, इसीलिए मैंने छोटा निकाला था। अच्छा, अभी ये आउटर एज है ना जम्मू द्वीप का, उससे कितना 180 लिखा ना, कितना लिखा 180 योजन दो हम जम्मू द्वीप में। देखो टोटल उनका क्षेत्र कितना है गमन भ्रमण करने का, 510 योजन, उसमें से 180 अंदर की ओर, आउटर से 180 अंदर, वहां से लेकर और शेष लवण समुद्र में 180, अभी इसमें से माइनस करो 300 और कुछ जो कुछ ऊपर है, तो उतना यहाँ पर, यानी इनका जो भ्रमण है एक ही लेवल पर नहीं है, अंदर बाहर चलता रहता है ना, जिसको हम दक्षिणायन उत्तरायण भी कहते हैं। सूर्य चंद्र का भी जो गमन होता है कभी अंदर कभी बाहर ऐसे होता है, तो उसमें से उसकी जो कलाएं वगैरह बनती है। हाँ, चंद्र सूर्य को छोड़कर 1121 का उन्होंने बताया था। अन्य जो तारे वगैरह है, कोई तारे नजदीक से गमन करते हैं, कोई दूर से करते हैं। हाँ, टोटल का बताया। हाँ, तो इस 1121 के अंदर कोई भी घूमते नहीं है। मेरु के चौ ओर 1121 उसमें कोई घूमने ये कुछ नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है। वो कहाँ पर है, इतना डिस्टेंस छोड़कर बाहर की ओर है, और उसमें 1121 के डिस्टेंस में इतने नजदीक से चंद्र सूर्य नहीं भ्रमण कर रहे। चंद्र सूर्य कहाँ से भ्रमण कर रहे हैं, जम्बू द्वीप का जो ये आउटर लिमिट है वहाँ उसका गमन क्षेत्र कितना है, चार क्षेत्र, तो कहते 510 योजन में उसका घूमना चलता है। तो कैसा, अभी जैसे हम वो कहते ना चकली, हम कैसे करते हो, चकली खाई करी, ऐसा भ्रमण हो, ऐसा होगा उसका भ्रमण, और फिर वो अंदर की ओर आएगा, फिर बाहर की ओर चला जाएगा, फिर अंदर की ओर आएगा। यानी जो स्प्रिंग कैसी होती है ना, मगर स्प्रिंग तो एक सेम विड्थ वाली होगी, ऐसे नहीं है। ये जो चकली या तो जलेबी हम कैसे कहते हैं ना, तो ये बाहर 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 बाहर, फिर बाहर से अंदर अंदर अंदर, इस तरह से उनका होता है। तो ये जो विड्थ है उनकी, हाँ, 510 योजन वाली, और वो 48 अंश। तो इसलिए 180 योजन जम्बू द्वीप में भ्रमण होता है, और बाकी जो बचा हुआ है 510 में से, वो लवण समुद्र में भ्रमण होता है उसका। इस प्रकार यह जम्बू द्वीप संबंधी ज्योतिषी विमानों का चार क्षेत्र समझना चाहिए। ये जो बात बताई है वो जम्बू द्वीप संबंधी नक्षत्रों की बात है, अन्य द्वीपों के वो अलग अलग है। हाँ, जम्बू द्वीप के चंद्र सूर्य इस तरह से भ्रमण करेंगे। शेष विमान सूर्य विमान कहलाता है, और वहां रहने वाले जीव ज्योतिषी विमानों में सब कुछ है, ग्रह है, नक्षत्र है, चंद्र है, सूर्य है, वो परिवार पूरा वो ज्योतिषी विमान कहलाता है। उसमें अगर स्पेसिफिक बताना है तो ये चंद्र विमान है, हम कहते हैं ना चंद्र का परिवार गिनाया जाता है, एक चंद्र, एक सूर्य, इतने नक्षत्र, इतने ग्रह, हमने हिसाब लगाया था ना पहले पूरा। धवला में भी बात हुई थी अपने, मेरे ख्याल से चौथे भाग में हुई थी। हाँ, सूर्य चंद्र के परिवार में, चंद्र को पहला लिया है। हमें उसके गणित भी देखे थे कि प्रत्येक द्वीप और समुद्र में चंद्र सूर्यों की संख्या कितनी कितनी होती है। हाँ, क्योंकि ढाई द्वीप तो ठीक है, मगर आगे किस तरह से किस रेशियो में गमन नहीं होता, पर उनकी संख्या तो हमने निकाला था, उसका कैसा हिसाब करना, उसके फॉर्मूले क्या है। देखो ढाई द्वीप के आगे मिला ज्योतिषी विमान स्थित है, ये देखो लिख लिया यहाँ, स्थित है, स्थिर है, इसलिए आगे चार क्षेत्र नहीं पाया जाता। ज्योतिषी विमान नहीं है ऐसा नहीं कहा, चार क्षेत्र नहीं, उनका भ्रमण नहीं है, रखना। शेष दो समुद्र डेढ़ द्वीप में भी ये हमने पढ़ा था, इसी प्रकार चार क्षेत्र कहा है। तो आगे वाले तो स्थित है, इसलिए वहां चार क्षेत्र नहीं पाया जाएगा, जो जहां है वहीं पर होगा गमन। अब महानिमित्त कौन कौन से है उसको बता रहे हैं। अंतरिक्ष है, हम कहते हैं ना ये आसमान ऊपर जो देखकर बताते हैं, वो अंतरिक्ष या स्पेस जिसको कहेंगे अभी। भौम अंग यानी भूमि को देखकर होता है वो भौम। अंग स्वर व्यंजन लक्षण छिन्न और स्वप्न ये अष्टांग महानिमित्त है, यानी उनको देखकर निमित्त ज्ञान की बात बताना और उसके ग्रंथ भी हो गए उस संबंधी। सूर्य चंद्र ये नीचे लिखा है उसका अंतरिक्ष किसको कहना। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारों के उदय अस्त तथा उल्कापात आदि से अतीत और अनागत कार्यों का ज्ञान करना अंतरिक्ष नाम का महानिमित्त है। पृथ्वी की स्निग्धता रुक्षता और सघनता आदि को जानकर उससे वृद्धि हानि जय पराजय तथा पृथ्वी के भीतर रखे हुए स्वर्णादि का ज्ञान करना आदि भौम नाम का महानिमित्त है। शरीर के अंग और प्रत्यंगों के देखने से त्रिकाल भावी सुख दुख का ज्ञान कर लेना अंग नाम का महानिमित्त है। ये मस्तक देखकर कुछ बताने वाले ऐसे होते हैं ना, तो हमें तो चमत्कार लगता है। ये तो ज्ञान की विशिष्ट बात है, निमित्त ज्ञान कहलाता है। ये अंग नाम का निमित्त है। ये अंग और अंग बाह्य वाला वो नहीं, अंग यानी शरीर के अवयव। हाँ। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अच्छे और बुरे शब्दों के सुनने से अच्छे बुरे फलों का ज्ञान कर लेना स्वर नाम का महानिमित्त है। ये भद्रभाव की बात आते हैं ना, वो दुकाल आने वाला था, कहीं आहार के लिए गए थे और वहाँ बोलो हाँ पालने में जो बच्चा था, इतना छोटा बच्चा, वो बोला मुंह से कुछ, उसको सुनकर उन्हें वो निमित्त ज्ञान हुआ 12 साल का दुकाल आने वाला। यानी जिस एज में बच्चे नहीं बोलते, इतना छोटा बच्चा कुछ बोल दिया उसने बच्चे ने, तो उसको सुनकर उन्हें वो निमित्त ज्ञानी थे ना। हाँ हाँ शांति सागर जी है ना, जैसे किसी गांव में गए थे तो ऑर्डिनरी वातावरण था, फिर भी कहा कि यहाँ नहीं हम ठहरे, ऊपर चलो। तो केवल उन्होंने आकाश को ऐसा देखा था, ऑर्डिनरी हमारे आप जैसे श्रावकों को तो उसमें कुछ नया नहीं था, जैसे रूटीन डेली जैसा ही दिखा था, परंतु उन्होंने तो ये तो महापुर आने की वहाँ कुछ बात बताई और फिर उन्होंने ऊपर पहाड़ पर जाके वो स्थित हो गए थे। दूसरी भी बात है, वो ऐसी बात होती है संयम के निमित्त से ऐसी बातें देखने में आती हैं। तो मुझे तो याद है कि मसवड़ में प्रतिष्ठा थी, मानस्तंभ आदि मंदिर की प्रतिष्ठा थी और गांव में पानी नहीं था, तो कैसा होगा क्या होगा बहुत चिंतित हुए थे लोग। तो उन्होंने बताया था कुछ चिंता मत करना, और बिल्कुल इतना अच्छी बरसात वगैरह हो गई थी, पानी आया था नदी में, वो तो गांव के बाहर नदी के उस पार उनका जो रहना था, गांव में तो नहीं रहते थे, वन में ही रहते थे। ये स्वर नाम का महानिमित्त, ऐसे निमित्त ज्ञान होते हैं। मस्तक मुख गला आदि में तिल मसा आदि को देखकर त्रिकाल विषयक अच्छे बुरे का ज्ञान कर लेना व्यंजन नाम का महानिमित्त है। शरीर में स्थित स्त्रीवस श्रीवस स्वस्तिक कलश आदि लक्षण चिन्हों को देखकर उससे ऐश्वर्य आदि का ज्ञान कर लेना लक्षण नाम का महानिमित्त है। बचपन में हम देखते थे कितने शंख और कितने चक्र है उंगलियों के ऊपर, हाँ, तो एक दूसरे को कुछ न कुछ बता देते थे, ये अच्छा है ये बुरा है। वस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा किए गए छिद्र आदि को देखकर, ये पहले भी बताया था ना मैंने, वस्त्र फटता है तो कुछ छिन्न हो गया तो उसके द्वारा वो निमित्त ज्ञान हो लेना। वस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा किए गए छिद्र आदि को देखकर शुभाशुभ का ज्ञान कर लेना छिन्न नाम का महानिमित्त है। हाँ हाँ, स्वामी जी की बात आती है ना, जब श्वेतांबर दीक्षा ली थी तो हाथी पर चढ़ते हुए वस्त्र फट गया था, तो तभी उन्हें मन में ऐसी कुछ शंका आई थी, ये तो वस्त्र वाला जो मुनिपना धारण किया था, तो उस संबंध में कुछ बातें आई थी, उनके प्रवचन में आती है बातें। निरोग पुरुष के द्वारा रात्रि के पश्चिम भाग में देखे गए स्वप्नों के निमित्त से, ये निरोग पुरुष लिखा है क्योंकि रोग के कारण वो कुछ ना कुछ स्वप्ने दिखते देखते रहते हैं। पश्चिम भाग यानी अर्ली मॉर्निंग, हाँ उत्तर रात्रि जिसको कहते हैं, स्वप्नों के निमित्त से सुख दुख का ज्ञान कर लेना स्वप्न नाम का महानिमित्त है, इत्यादि समस्त वर्णन कल्याण प्रवाद पूर्व में है। ये 11 नंबर हो गया। अब प्राणवाय प्रवाद 12 नंबर का। प्राणवाय प्रवाद नाम का पूर्व 5 इंद्रिय 3 बल आयु और श्वासोच्छ्वास इन 10 प्राणों की हानि और वृद्धि का वर्णन करता है। ये द्रव्य प्राण कहते हैं ना हम इसके, ये तो बहुत हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है प्राणों की। शंका, आहार निरोध आदि कारणों से उत्पन्न हुए कदलीघात मरण के निमित्त से आयु प्राण की हानि हो जाओ, परंतु आयु प्राण की वृद्धि नहीं हो सकती है, हानि वृद्धि बताए ना होना, क्योंकि नवीन स्थितिबंध की वृद्धि हुए बिना उत्कर्षण के द्वारा केवल सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति की वृद्धि नहीं होती। क्या पूछा उसने, आहार निरोध आदि यानी विषय भक्षण अभी एक्सीडेंट हम कुछ भी कहे, इसके द्वारा कदली घात के द्वारा आयु की हानि तो देखी जाती है, परंतु आयु प्राण की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि अभी नया आयु बंध तो नहीं होगा, क्योंकि जो पहले बांध कर आया है तो इस भव में तो बढ़ेगा नहीं है। क्योंकि नवीन स्थिति बंध की वृद्धि हुए बिना, यानी जब नया स्थिति बंध होता है वो अधिक हुए बिना उत्कर्षण के द्वारा, यानी जो बांधा है और अपने आप उसका उत्कर्षण हो जाए, उत्कर्षण के द्वारा केवल सत्ता में स्थित कर्मों के स्थिति की वृद्धि नहीं होती, तो उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 8 अपकर्षों के द्वारा आयु कर्म का बंध करने वाले जीवों के, ये पूर्वभव की बात है, तो उसने कहा था वो बांधी है और उत्कर्षण ऐसे ही हो गया नए बंध के बिना ही, अधिक स्थिति बंध हुए बिना ही उत्कर्षण होकर बढ़ गई आयु, ऐसा तो नहीं होता है। तो कहते हैं 8 अपकर्षों के द्वारा, ये अपकर्ष किसको कहते मालूम है, 8 पूरा वाक्य पढ़ती हूँ मैं, 8 अपकर्षों के द्वारा आयु कर्म का बंध करने वाले जीवों के आयु प्राण की वृद्धि देखी जाती है। हाँ, 8 बार आयु यानी वो त्रिभाग त्रिभाग में जो बांधते ना उसको अपकर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय मध्यम परिणाम होते हैं जीव के, ना अत्यंत तीव्र संक्लेश या ना अत्यंत तीव्र विशुद्धि, तो मध्यम परिणामों का उस समय होने की वो आयु बंधने के चांस होते हैं। तो कोई जीव एक बार ही आयु बांधता है, पहले त्रिभाग बाकी है तभी, मनुष्य और तिरियंचों के तो एक त्रिभाग बाकी है आयु का, तभी आयु बांधने का पहला अवसर आता है, उसको पहला अपकर्षण कहते, अपकर्ष कहते, न नहीं लगाना। फिर जो बची हुई वंथड़ है ना उसका वंथड़ करो, वो जब बचती है उतनी आयु, तो उसके पहले अंतर्मुहूर्त में फिर दोबारा अपकर्ष काल आता है, तो वहां आयु का बंध हो सकता है। तो किसी के ऐसे 8 बार मिलकर आयु का बंध होता है, 8ों ही अपकर्षों में आयु का बंध होता है, ऐसा नहीं कि 8 में से एक ही बार बंध होगा, ऐसी बात नहीं है, किसी को 7 बार में बंध होता है, किसी को 6, 5, 4, 3, किसी को एक ही बार आयु का बंध होता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि एक ही बार होगा या दो ही बार होगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो कहते हैं पहली बार जो बंध हुआ था तो तो दूसरी बार बंद होने वाले को फिर ज्यादा भी बन सकती है। अब विशेषार्थ हम देखेंगे तो ज्यादा और स्पष्ट हो जाएगा। उत्कर्षण के समय आयु प्राण है ना, आयु कैसे बढ़ेगी, तो पूर्व में बढ़कर पहले बांधी थी और अभी ज्यादा बांधी पूर्व भव में ही। हाँ, पहले कम बांधी थी फिर ज्यादा बांधी तो वो बढ़ गई। तो उत्कर्षण के समय, उत्कर्षण होना है ना स्थिति बढ़ना, उसको उत्कर्षण कहते हैं। उत्कर्षण के समय सत्ता में स्थित पहले के कर्म निषेकों का बंधने वाले तद जातीय यानी उसी जाति के कर्म चाहिए, कर्ण हुआ है, कर्म निषेकों में ही उत्कर्षण होता है। ये उत्कर्षण का सामान्य नियम बताया। जब कभी उत्कर्षण होता है, उत्कर्षण यानी स्थिति बढ़ना, कर्मों के जो निषेक है ये सत्ता में इतने निषेक पड़े हैं, तो इनका उत्कर्षण होना यानी वो नीचे के कुछ परमाणु, सभी निषेक तो ऊपर नहीं चले जाते, कुछ परमाणु इन निषेकों को छोड़कर ऊपर के निषेकों में जाएंगे, परंतु ऐसे ही नहीं जाते। उसके लिए एक कंडीशन आवश्यक है, उसी समय जो नया बंध हो रहा है, तो यहाँ कोई नया बंध हो रहा है, ये उसका आबादा है और इतना उसका बंध हो रहा है, तो यहाँ के जो कोई परमाणु है अपनी जगह छोड़कर ऊपर के निषेकों में जा मिलते हैं, उसको कहते उत्कर्षण। और उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, नया बंध, नए बंधने वाले कर्मों के निषेकों में जा मिलते हैं जो उस स्थिति से ज्यादा स्थिति वाले हो। अभी उसमें और कुछ कंडीशन है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ये इतना बेसिक प्रिंसिपल है। तो क्या कहते हैं, देखो उत्कर्षण के इस सामान्य नियम के अनुसार ज्ञानावरण आदि अन्य कर्मों में तो उत्कर्षण बन जाता है, यानी क्योंकि उसका तो क्यों बन जाता है, ज्ञानावरण में उत्कर्षण होना बहुत आसान है, ऐसा क्यों बोलो। हाँ, हर समय बंद हो रहा है, वो तो ध्रुव बंदी प्रकृति है, तो हर समय बंद होता है, और जो नीचे के निषेकों में परमाणु है और बंद हो रहा है, तो जो ऊपर की स्थितियों में चले जाए तो हम कहेंगे वो उत्कर्षण हुआ उसका, तो वो तो समझ में आए और वो तो आसान है, वो तो बात सहज है। परंतु एक काल में एक ही आयु का बंद होने से, आयु एक ही किसी आयु का बंध हो गया ना, या मनुष्य आयु या तिर्यंचायु नरकायु या देवायु, उनका आपस में कोई संक्रमण नहीं होता है, एक बात। और एक काल में एक ही आयु का बंध होने से उसमें उत्कर्षण कैसे बन सकता है, और वो होता है वो भी अंतर्मूर्त के लिए होता है, निरंतर या ध्रुव बंधी तो है ही नहीं वो, निरंतर मत कहो, अंतर्मूर्त होता है उसको निरंतर कह सकते हैं, परंतु ध्रुव बंधी ने हर समय लगातार चलता ही रहे ऐसी बात नहीं है। जब प्राणी एक आयु का उपभोग करता है, प करो उसका, उपभोग करता है, उपभोग करने ने आयु का उदय चल रहा है, तब उस भुज्यमान आयु की सत्ता रहते हुए, भुज्यमान ने जो भोगी जाती है वो भुज्यमान, अभी हमारे सबके पास अभी भुज्यमान आयु कौन सी चल रही है, मनुष्य आयु। हाँ, बद्यमान कौन सी है पता नहीं बांधी है कि नहीं वो भी पता नहीं। हाँ देखो, आठों ही अपकर्षों में बंधेगी ही, ऐसा भी नियम नहीं, कभी कभी मरण से एक अंतर्मूर्त पहले, जिसको असंक्षेपाध्या कहते हैं, मिनिमम अंतर्मूर्त जितना पॉसिबल है, तब भी आयु बन सकती है, कि हम अभी इतने बूढ़े हो गए तो हमारी बन चुकी होगी, ऐसी कोई गारंटी की है नहीं है। देखो क्या कहते हैं, जब प्राणी एक आयु का उपभोग करता है, तब उस भुज्यमान आयु की सत्ता रहते हुए, यद्यपि दूसरी आयु का बंध होता है, बंध तो है ना, पहले ही जो अभी हमारी मनुष्य आयु चल रही है और हम आगामी आयु का हम कहेंगे ना देव आयु का बंध करेंगे, हाँ तो बंध तो हो सकता है, पर समान जातीय या असमान जातीय दो गति संबंधी दो आयुओं का परस्पर संक्रमण न होने से, अब हमारी है मनुष्य आयु और हमने देवायु बांधी तो असमान हो गए, मनुष्य ने मनुष्यायु बांधी तो समान हुई। तो कहते हैं ऐसे जो दो आयु है ना, एक भुज्यमान और एक बध्यमान, भुज्यमान में से थोड़ी उसमें चली जाए ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये जो बांधी उसमें से थोड़ी अभी आए अभी वर्तमान, हमने मनुष्यायु तो बांधी है तो वो आयु में से थोड़ी अभी भोग लेते हैं ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम भगवान के आगे वो पिक्चर में मूवीज में देखते गिर गिराते, मेरी आयु इसको बच्चे को दे दो, तो कहते हैं समान जाती है असमान जाती है दो गति संबंधी दो आयुओं का परस्पर संक्रमण न होने से बुज्जमान आयु का बद्यमान आयु में उत्कर्षण नहीं हो सकता। ज्ञानावरणादि तो हमने देखा था कि पहले सत्ता में पड़ा है और अभी जो नया बंध होता है, नए बंधने वाले निषेकों में पूर्व के बंधे हुए निषेक ऊपर की ओर चले जाते हैं तो हम ऊपर के ने स्थिति बढ़ती है तो हम उसको कहते उत्कर्षण हुआ। ऐसे भुज्यमान और बद्यमान में ऐसा उत्कर्षण संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार भुज्यमान आयु में बाह्य निमित्त से अपकर्षण और उदीर्णा हो सकती है उस प्रकार उत्कर्षण नहीं बन सकता। भुज्यमान ने जो भोग रहे हैं हम आयु उसमें तो हमने देखा था उदीर्णा तो हर समय चलती रहती है, ये पहले अपना उदीर्णा के प्रकरण में हमने देखा था, किसी भी भव के अंतिम एक आवली छोड़कर पहले समय से लेकर उस एक आवली तक हर समय उदीर्णा ने कुछ कुछ परमाणु नीचे आते रहते हैं, ऐसी उदीर्णा तो हो रही है, या कदली घात वाला भी हो सकता है मनुष्य और तीरियंचो में, हाँ आयु की भी उदीर्णा होती है क्यों बुज्जमान आयु में बाह्य निमित्त में हमने पहले देखा था संक्लेश आदि परिणामों के कारण, हाँ बुज्जमान है ना वर्तमान, हाँ नहीं नहीं उसकी बात नहीं, बुज्जमान आयु में ही किसके कारण हो सकता है, बुज्जमान आयु में उत्कर्षण नहीं होता है पहले बता रहे, अभी तो बद्यमान की बात अभी नहीं कर रहे, बद्यमान में जो कुछ हो रहा है उसकी बात करेंगे फिर, हाँ हाँ बुज्जमान में उत्कर्षण तो नहीं होता परंतु उदीर्णा होती है, उदीर्णा बिना संक्लेश के भी उदीर्णा हर समय चल रही है, थोड़े थोड़े परमाणु नीचे तो ऊपर के निषेकों में से नीचे के निषेकों में आ मिलना उदयावली में, ऐसी उदीर्णा तो हर समय चल रही है, उसके लिए कोई बाह्य कारण की भी जरूरत नहीं है। तो भुज्यमान आयु में बाह्य निमित्त से अपकर्षण और उदीर्णा हो सकती है उस प्रकार उत्कर्षण नहीं बनता, यानी उदीर्णा जो होते वो अपकर्षण द्वारा ही होती है परंतु उत्कर्षण तो नहीं हो सकता। अतः आयु कर्म में उत्कर्षण करण नहीं कहना चाहिए, यह शंकाकार की शंका का अभिप्राय है। यहां तक तो शंकाकार की शंका है, उत्कर्षण नाम का करण ने अवस्था उसकी नहीं हो सकती आयु कर्म में, यह बात बताना चाहता है। इसका जो समाधान किया गया है वह इस प्रकार है कि यद्यपि बुज्यमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता यह ठीक है, फिर भी विवक्षित एक भव संबंधी आयु का 8 बार 7 बार आदि अपकर्ष कालों की अपेक्षा अनेक कालों में बंध संभव है। ये बंध और संभव में जरा अंतर चाहिए। अतः उन अनेक अपकर्ष कालों में बंधने वाले एक आयु का उत्कर्षण बन जाता है। अब उसको समझाएंगे। देखो जैसे किसी एक जीव ने पहले अपकर्ष काल में आयु का बंध किया, उसके जब दूसरे अपकर्ष काल में भी आयु का बंध हो और उसी समय पहले अपकर्ष काल में बंधी हुई आयु के विवक्षित निषेकों का उत्कर्षण हो, तो आयु कर्म में उत्कर्षण करण के होने में कोई बाधा नहीं आती। आयु के जो है वो निषेक, आयु के भी निषेक रचना होती है, अंतर्मूर्त में आयु बंधी है। अब कितनी बंधी है, मान लेते 100 साल की बांधी उसने, तो 100 साल में ये प्रत्येक समय में एक एक निषेक, ऐसे 100 साल की निषेक रचना हो जाएगी। और फिर दोबारा जब वो उसने बांधी है और दोबारा बांधी है, तब उसमें क्या हुआ, उसने भी 100 साल की बांधी, हम समझ लेते हैं 100 साल की भी हो तो भी नीचे के निषेकों में से ऊपर के निषेकों में तो जा ही सकते कुछ परमाणु। ये अधिक आयु बांधने की बात तो बाद में देखेंगे, नीचे के कुछ परमाणु ऊपर चले जा सकते हैं, जो पहले समय में उदय योग्य थे वो बाद में भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो उत्कर्षण है आयु के लिए। तो कहते अपकर्ष काल में बंधी हुई आयु के विवक्षित निषेकों का उत्कर्षण हो, तो आयु कर्म में उत्कर्षण करण के होने में कोई बाधा नहीं है, यानी वहां हम उत्कर्षण मान सकते हैं। इसी प्रकार अन्य अपकर्ष कालों की अपेक्षा भी उत्कर्षण की विधि लगा लेनी चाहिए। किन निषेकों का उत्कर्षण होता है और किन का नहीं, उत्कर्षण के विषय में अतिस्थापना और निक्षेप का प्रमाण क्या है, जिसका पहले उत्कर्षण हो गया है उसका यदि उत्कर्षण हो तो अधिक से अधिक कितना उत्कर्षण होता है, इत्यादि विशेष विवरण लब्धिसार आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिए। नहीं तो कहेंगे यही के उसका विस्तार करेंगे तो ये ग्रंथ बाजू में ही रह जाएगा। यहाँ केवल आयु कर्म में उत्कर्षण कैसे संभव है इतना दिखाना मात्र प्रयोजन होने से अधिक नहीं लिखा है। कर्णानियोग के अन्य ग्रंथ जो है कर्मकांड आदि या उत्कर्षण करण आदि जहाँ बताया जाता है वहाँ इसकी विशेष चर्चा होगी। प्राणावाय प्रवाद पूर्व हाथी घोड़ा और मनुष्य आदि से संबंध रखने वाले अष्टांग आयुर्वेद का कथन करता है। ये अष्टांग आयुर्वेद यहाँ से निर्माण हुआ है हो, क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्राणवाय की बात चल रही ना, 10 प्राणों की बात हमने देखी थी और 10 प्राण में हमने हानि वृद्धि कैसे होती वो भी बताई थी, और वो प्राण के लिए यहाँ औषधि के रूप में वो अष्टांग आयुर्वेद की जो बात है। आपने पूज्यपाद आचार्य का नाम सुना है? तो अभी वर्तमान में कितने ही जो आयुर्वेद के ग्रंथ है वो उनके द्वारा लिखित है। ये तो मूल अंग की बात है, पूर्व की बात है, परंतु अभी अभी जितना आयुर्वेद के ग्रंथ उपलब्ध है उसमें पूज्यपाद आचार्य बहुत महत्व का उनका योगदान है। शंका, आयुर्वेद के 8 अंग कौन से हैं? उसका समाधान, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत तंत्र, शल्य यानी सर्जरी, हाँ, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, बाल रक्षा और बीज वर्धन, ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। विशेषार्थ, आयुर्वेद शास्त्र में रोगों के निदान, उनके शांत करने की विधि, निदान ने डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट, प्राणियों के जीवन की रक्षा के उपाय प्रिवेंटिव, और संतति उत्पन्न करने के नियम आदि बतलाए गए, वो सब गायनेक ऑब्स्टेट्रिक सब कुछ है। इसके शालाक्य आदि 8 अंग है। शलाका कर्म को शालाक्य कहते हैं और इसके कथन करने वाले शास्त्र को शालाक्य तंत्र कहते हैं। इसमें जिन रोगों का मुंह ऊपर की ओर है, ऐसे कान नाक मुंह और चक्षु आदि के आश्रय से स्थित रोगों के उपशमन की विधि तथा चीर फाड़ आदि बतलाई गई है। अतिसार, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह और ज्वरादि रोगों से ग्रस्त शरीर की चिकित्सा काय चिकित्सा कहलाती है, तथा जिसमें इसका कथन किया गया है उसे काय चिकित्सा तंत्र कहते हैं। भूत, यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि जन्य बाधा के निवारण का कथन करने वाला शास्त्र भूत तंत्र कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के देवों आदि के शांत करने की विधि बतलाई गई है, जिसमें शल्य जन्य बाधा के दूर करने के उपाय बतलाए गए हैं, वह शल्य तंत्र है। इससे कांटा आदि के शरीर में चुभ जाने पर उसके निकालने की विधि बतलाई गई है। ये देव यानी वो सच्चे देव की बात नहीं है, ये ऊपर बताए ना भूत, यक्ष आदि, हाँ मैंने पहले बताया था शास्त्र में बहुत बार है, मणि मंत्र यंत्र तंत्र वगैरह उसका जो अद्भुत सामर्थ्य है, ऐसा ही स्वभाव होता है और स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। आपका सिर दुख रहा है और गोली आपने मुंह से खाई, पेट में गई और सिर का दर्द कैसे मिट गया, तभी तो कभी क्वेश्चन ही नहीं होता है ना। आपने यहाँ बटन दबाया मोबाइल का और वहां कौन दिल्ली वाला सुन रहा है, वो तो तंत्र हो गया, तंत्र है ना। ऐसे मंत्रों की भी शक्ति होती है और यहाँ तो एक्चुअली आयुर्वेद है, यहाँ तो विधि है, विधि है ना, उसके जैसे औषधि जैसे किए होते ना, औषधि के रूप में भी ये रसायन आदि क्या है, ये तो पैर के तलवों में लगाकर आकाश गमन करते थे तभी, ऐसी ऐसी विधियां थी उनकी। एक ये सारे निमित्त ऐसे होते हैं, निमित्त होते हैं, तो निमित्तों का कथन ये पहले हमने देखा था ना, ये दसवा पूर्व कौन सा देखा था, प्राणावाय के पहले वो विद्यानुप्रवाद, विद्यानुप्रवाद में ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जिसको कहते ना वो मैली विद्या, उनका भी कथन है, क्योंकि जितने है उसका कथन तो होगा ना, तो उनका कथन होता है उसमें, तो यानी वशीकरण, मारण, तारण, ये सब ऐसे भी विद्याओं का उसमें वर्णन है, वो करने के लिए थोड़ा ही वर्णन किया है, वो शास्त्र है और उसका वर्णन है, तो उसको पढ़कर तो कितने ही यानी झूठे मार्ग पर लग जाते हैं, यानी वो सच्चा इतना मार्ग प्राप्त हुआ है वो भ्रष्ट हो जाते हैं उसको सुनकर, ऐसे भी है इसलिए डॉक्टर छोड़ा कर पूछ रहे। ये शल्य तंत्र हुआ, ये इसकी भी बातें हुए, हाँ, जिसमें विष मारण की विधि, विष मारण यानी विष को नष्ट करना, विष की शक्तिहीन कर देना, उसको विष मारण कहते हैं। ये शांति मंत्र आदि होते हैं ना, उसमें वो विष मारण ऐसे कुछ आते हैं ना, ये सब नष्ट हो जाओ ऐसी बातें आती है ना उसमें, हाँ, जिसमें विष मारण की विधि बतलाई गई है वह अगध तंत्र है। इसमें सर्प, बिच्छू, चूहा आदि के काट लेने पर शरीर में जो विष प्रविष्ट हो जाता है उसके नाश करने की विधि तथा विष के मारण आदि करने की विधि बतलाई गई है। विष का मारण करने ने विष को निर्विष कर देना, ये विधि की बात है, अकेले मंत्र की बात नहीं है, उसकी टेक्निक जो है। अगध तंत्र का दूसरा नाम जंगोली तंत्र भी है, जिसमें बुद्धि, आयु आदि की वृद्धि के कारणभूत नाना प्रकार के रसायनों की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है, वह रसायन तंत्र है। ये ययाति देवयानी वगैरह जिसने पढ़ी होगी मराठी, ऐसे रसायन होते थे, अभी वृद्धत्व आ गए ना, अभी हमें तो पता है आयु तो बढ़ेगी नहीं, परंतु शरीर में जो वृद्धत्व आता है तो ये रसायन आदि के पी जाने पर जुआन जैसे हो जाते थे, ये रसायन विद्या है। ये बुद्धि की भी बातें की है। अभी आजकल जो मेडिसिन है वो तो रासायनिक ही है ना, केमिकल ही है फॉर्मूले, तो एक प्रकार की वो रसायन ही कहेंगे हम उसको, वो रसायन तंत्र है। बालकों की रक्षा आदि का कथन करने वाला शास्त्र बाल रक्षा तंत्र कहा जाता है, पीडियाट्रिक्स। इसमें बालकों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, उन्हें दूध कैसे पिलाना चाहिए, दूध शुद्ध कैसे किया जाता है आदि विषयों का कथन है। बाजीकरण औषधियों का कथन करने वाला शास्त्र बीज वर्धन तंत्र या क्षार तंत्र कहलाता है। इसमें दूषित वीर्य को शुद्ध करने की विधि, क्षीण वीर्य को बढ़ाने की विधि और हर्ष को उत्पन्न करने वाले नाना प्रकार के प्रयोगों आदि का कथन किया गया है। अब आगे क्रिया विशाल नाम का पूर्व, कितवा नंबर देना है? चौदहवा लोग बिंदु सार है ना। क्रिया विशाल नाम का पूर्व नृत्य शास्त्र, गीत शास्त्र, लक्षण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नपुसक स्त्री और पुरुष के लक्षण आदि का वर्णन करता है। तो ये संगीत और नृत्य करते जाओ ऐसा बताया, ये तो शास्त्र का वर्णन है। क्योंकि देखो सर्वज्ञ है तो सब कुछ जानेंगे, तो इसके भी जो कोई शास्त्र है, ये भारत नाम का जो शास्त्र है, भारत नृत्य गीत शास्त्र ऐसा कुछ आता है, ये जो साउथ इंडियन जो सारे भरतनाट्यम कहते, पर भारत नाम का नाट्य शास्त्र है, नृत्य संबंधी शास्त्र है, नृत्य शास्त्र, गीत शास्त्र, लक्षण शास्त्र। वो आपको किसी ने पूछा था ना, देखो हमको बताया नहीं जिनेंद्र भगवान ने ये सारा संगीत का शास्त्र लिखा है, और आपने बात हमारे से छिपी रखी। देखो संगीत से भी मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा उसमें से उल्टा अर्थ निकालने लगे। लोक बिंदु सार ये अंतिम, एक सौ 36 पृष्ठ पर, इसी को त्रिलोक बिंदु सार भी कहा है। लोक बिंदु सार नाम का पूर्व परिकर्म, व्यवहार, रज्जु राशि, कलासवन्न, कलासवन्न अर्थात गणित का एक भेद विशेष, गुणकार, ये परिकर्म वगैरह वो गणित को ही कहते हैं, गणित का ही एक नाम परिकर्म है। परिकर्म ने वो हम कहते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ करना, बाद करना, मराठी में जिसको बेरीज वजाबाकी कहते हैं, गुणाकार, भागाकार, ये सब जो विधियां हैं अलग अलग प्रोसेसेस, तो उसको ये गणित शास्त्र या परिकर्म भी कहते हैं। तो ये उसी के सारे जो भेद है कि परिकर्म, व्यवहार, रज्जु राशि, कला संवन्न, गुणकार, वर्ग, धन, धन नहीं घन चाहिए, ऊपर क्या लिखा है, जावंताव वग घन, घन है ना बीज गणित, मोक्षाणम स्वरूपम बनने दी, बीज गणित और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करता है। इसलिए दृष्टिवाद का कथन तदुभय रूप है। ये स्वसमय वक्तव्य के परसमय वक्तव्य की बात चली थी, याद है 14 के 14 प्रकीर्णक जो है वो क्या है, स्वसमय, स्वसमय, और 11 अंग स्वसमय ही है, ये पढ़ा था हमने, और 12वें अंग में ये स्वमद्वी और परम तदुभय, 12वें अंग में, इसलिए दृष्टिवाद का कथन तदुभय रूप है, यानी परमत का कथन है परंतु उसका तो वो झूठा कैसा है ये सिद्ध किया है हमने, कहा ये ऐसा ही है वैसा ही है ऐसे, उसका भी निराकरण किया था वो सूत्र में। परंतु कषाय पाहुड़ का कथन तो स्व समय ही है, क्योंकि इसमें पेज और दोष का ही वर्णन किया है, इस प्रकार वक्तव्यता का कथन समाप्त हुआ। ये वक्तव्यता किसका भेद था कुछ याद है? उपक्रम का, उपक्रम के और कौन से भेद देखे हमने, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण और वक्तव्यता, अभी एक बाकी रहा अर्थाधिकार, विशेषार्थ। स्वसमय, परसमय और तदुभय के भेद से वक्तव्यता तीन प्रकार की है, इसका पहले कथन कर ही आए हैं। जिसमें केवल जैन मान्यताओं का वर्णन किया गया हो उसका वक्तव्य स्व समय है। देखो स्पष्ट लिख दिया ना, जिसमें जैन बाह्य मान्यताओं का कथन किया गया हो उसका वक्तव्य पर समय है। कथन किया, उसको करने को नहीं कहा है, नहीं तो कहेंगे भगवान ने ये बताया ना तो हम करेंगे। भगवान ने तो मिथ्यात्व का भी वर्णन किया है तो उसको करने का उपदेश नहीं किया है, नहीं करने का उपदेश है। और जिसमें पर समय का विचार करते हुए स्व समय की स्थापना की गई हो उसका वक्तव्य तद्भव है। इस नियम के अनुसार आचार आदि 11 अंग ये लिखा है, देखो यहां फिर से, और सामयिक आदि 14 अंग बाह्य स्व समय वक्तव्य रूप ही है, ही लगाया, क्योंकि इनमें पर समय का विचार न करते हुए केवल स्व समय की ही प्ररूपणा की गई है। यानी इसमें पर समय क्या है, उनके क्या मत है, क्या एकांतवाद है, उसकी चर्चा उसमें नहीं है। वो हमने कल क्रियावाद, अक्रियावाद, ज्ञानवाद, अज्ञानवाद वगैरह देखा ना, विनय वैनयिक वगैरह, उसमें वो पर समय की वर्णन उसका किया था। तथा दृष्टिवाद अंग तदुभय है, क्योंकि एक तो इसमें पर समय का विचार करते हुए स्व समय की स्थापना की गई है, दूसरे आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र आदि अन्य विषयों का भी कथन किया गया है। आजकल का ये वास्तुशास्त्र निकला है ना, तो वास्तुशास्त्र के ऊपर जैन ग्रंथ भी है, तो देखो तो कहीं इसमें लिखा है ना, अरे वो करने के लिए को नहीं, किसने कहा है। तो वास्तुशास्त्र के द्वारा ये तो मिथ्या मान्यता और पुष्ट कर लेता है कि ये करने से मेरा भला हो जाएगा। वो तो टेक्निक बताते हैं, उसकी विधि बताते हैं, उसका शास्त्र बताया जाता है। तो संगीत शास्त्र का वर्णन है तो इसलिए संगीत जाके अभी संगीत के क्लासेस लगा लो, ऐसी थोड़ी बात है। हमें तो अपना प्रयोजन निश्चित करना है कि हमें भव का अभाव करना है, तो उसके लिए कार्यकारी क्या है उसको पहले सीखना है। तो ये तो संयोगों में इतना रचा पचा है कि उसी को पलटाने में इसकी सारी मेहनत और सारा प्रयत्न चलता है। अब ये उपक्रम पांचवा चलेगा, उपक्रम नंबर 5। अर्थाधिकार 15 प्रकार का है। अरे ऊपर सूत्र है, ये फ्लावर की साइन इन्हें क्या है, चूर्णी सूत्र। हाँ, अथा ही आरो पन्नारस विहो, पन्नारस ने 15, विहो ने प्रकार का, विध विध जिसको हम कहते हैं। अर्थाधिकार 15 प्रकार का है। विध शब्द आपने सुना है ना, चतुर्विध, अष्टविध यानी 8 प्रकार का, ऐसे पन्नारह विहो। यह सूत्र देशामर्शक है। देशामर्शक शब्द पहले आया था, हाँ थोड़ा बताए, हाँ थोड़ू लख्यू घणू जान जो देशामर्शक यानी हम ताल वृक्ष की बात की तो वही एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। एक का किसी का उदाहरण के तौर पर कथन करते हैं या थोड़ा लिखते हैं उसमें, और सारा जो गर्भित अर्थ है उसको उसमें से निकाल कर अभी ये जय धौलाकार हमको बताएंगे। यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इस सूत्र से सूचित चाहिए। वो च की वेलांटी सु को लग गई, तो इस सूत्र से सूचित होने वाले अर्थ का कथन करते हैं, वह इस प्रकार है। कथन करते, हाँ दो बार करते हो गया, वह इस प्रकार है। ज्ञान के 5 अर्थाधिकार हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। श्रुत ज्ञान के 2 अर्थाधिकार हैं, अनंग प्रविष्ट और अंग प्रविष्ट। देखो ये कितने अलग अलग नाम है, अंग प्रविष्ट, और दूसरे को हमने पहले अंग बाह्य कहा था, उसी को प्रकीर्णक कहा था, उसी को यह अनंग प्रविष्ट कहते हैं। जो अंग प्रविष्ट नहीं है वह अनंग प्रविष्ट, और एक नाम आया उसका। अनंग प्रविष्ट श्रुत के चौथा अर्थाधिकार है जो हमने पूरे विस्तार से पढ़ा था। प्रत्येक का विषय क्या है, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरिक, महापुंडरिक और निषिद्धिका। अंग प्रविष्ट में 12 अर्थाधिकार है, ये 12 अंग जिसको कहते हैं, आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रण्यति, नाथ धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अंतकृत दश, अनुत्तरोपपादिक दश, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। हर एक के आगे अंग अंग शब्द लगाएंगे हम तो ये अंगों के नाम हो गए। दृष्टिवाद नाम के 12वें अंग प्रविष्ट श्रुत में 5 अर्थाधिकार हैं, ये भी हमने विस्तार से देखे थे। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। परिकर्म में 5 अर्थाधिकार है, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। सूत्र में 88 अर्थाधिकार है, परंतु उन अर्थाधिकारों के नाम अवगत नहीं है क्योंकि वर्तमान में उनके विषय में विशिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता। प्रथमानुयोग में 24 अर्थाधिकार है क्योंकि 24 तीर्थंकरों के पुराणों में सभी पुराणों का अंतर्भाव हो जाता है। क्या कहते हैं, 24 तीर्थंकरों का वर्णन होगा तो उसमें वो चक्रवर्ती नारायण, वो अन्य भी जो पुरुष है श्रेष्ठ शलाका पुरुष, उनका भी वर्णन उसमें अंतर्भूत हो जाता है। चूलिका में 5 अर्थाधिकार है, जलगता, स्थलगता होगी आगे, हाँ, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। पूर्वगत के 14 अर्थाधिकार है, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुप्रवाद पूर्व, कल्याण प्रवाद पूर्व, प्राणावाय प्रवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। अब किसमें कितने अर्थाधिकार है उसको बताएंगे। उत्पाद पूर्व के 10, पूर्व के जो अर्थाधिकार होते उसका नाम क्या है, एक एक पूर्व में क्या क्या होता है, ये जो उत्पाद के 10 बताए वो 10 को क्या कहेंगे आगे कुछ, हाँ नहीं, अंग बाह्य वस्तु। अब अंग बाह्य को यहाँ कहाँ ले आए, हाँ देखो हम कहें ज्ञान प्रवाद में कितने वस्तु, 12, उसमें से 10वीं वस्तु में से ये निकालना है ना, 10वीं वस्तु के तीसरे कषाय प्रावृत में से निकला है। वस्तु के जो अर्थाधिकार है उसको प्रावृत कहेंगे, हाँ पूर्व के जो है उसको वस्तु कहेंगे। हर एक पूर्व के वस्तु कितनी है उसकी संख्या अलग अलग है, वो यहाँ बता रहे हैं। उत्पाद पूर्व के 10, अग्रायणी के 14, वीर्यानुप्रवाद के 8, अस्थिनास्ति प्रवाद के 18, ज्ञान प्रवाद के 12, सत्य प्रवाद के 12, आत्म प्रवाद के 16, कर्म प्रवाद के 20, प्रत्याख्यान प्रवाद के 30, विद्यानुप्रवाद के 15, कल्याण प्रवाद के 10, प्राणावाय प्रवाद के 10, क्रिया विशाल के 10 और लोक बिंदुसार के 10 अर्थाधिकार है। ये अर्थाधिकार का नाम वस्तु है, अर्थाधिकार यानी वस्तु है। इन अर्थाधिकारों में से प्रत्येक अर्थाधिकार के यानी प्रत्येक वस्तु के 20-20 अर्थाधिकार है जिनका नाम प्रावृत है। पहले जो हमने देखे वो वस्तु थे, अभी ये प्रावृत है। उन प्रावृत संज्ञा वाले अर्थाधिकारों में से प्रत्येक अर्थाधिकार के 24-24 अर्थाधिकार हैं, जिनका नाम अनुयोग द्वार है। यहाँ डायरेक्ट उन्होंने अनुयोग द्वार लिखा है, हम जो पढ़े थे उसमें प्रावृत प्रावृत उसका नाम था, और प्रावृत प्रावृत के अर्थाधिकारों का नाम है अनुयोग। किंतु यहाँ प्रकरण प्राप्त इस कषाय प्रावृत के 15 अधिक अर्थाधिकार हैं। यह इस कषाय प्रावृत में 15 अर्थाधिकार बतलाए क्या? हाँ नहीं नहीं, कषाय प्रावृत का नंबर है 3रा, और उस प्रावृत में यहाँ जो अनुयोग बताए हैं उसके बदले वहां उसके 15 अर्थाधिकार बतलाए हैं। विशेषार्थ, यद्यपि 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व की 10वीं वस्तु के, ये हमने देखा था ना, देखा है हम इसे, 3रे पेज्जपाहुड़ कहो या कषाय प्रावृत कहो एक ही बात है, उसी का नाम पेज्ज दोष प्रावृत भी कहा, 24 अनुयोग द्वार है, परंतु यानी उसके 24 अर्थाधिकार है, फिर भी उस पेज्जपाहुड़ के आधार से गुणधर भट्टारक ने 180 गाथाओं में जो यह पेज्जपाहुड़ निबद्ध किया है इसके 15 ही अर्थाधिकार है। क्या कहते हैं, पाहुड़ के अर्थाधिकार कितने होते हैं किसी भी पाहुड़ के? तो 24 होते हैं। तो ओरिजिनल जो पेज्जपाहुड़ है उसके 24 अर्थाधिकार हो गए, परंतु ये जो नई रचना की किसने की? गुणधर भट्टारक ने, गुणधर आचार्य ने, तो उसके 15 अर्थाधिकार है वो 180 गाथाओं में। अब 15 अर्थाधिकारों के नाम निर्देश के साथ, यानी वो 15 अर्थाधिकार कौन कौन से है उसका नाम बताएंगे। एक एक अर्थाधिकार में इतनी इतनी गाथाएं पाई जाती है, इस प्रकार प्रतिपादन करते हुए गुणधर भट्टारक 16,000 पदों के द्वारा कहे गए कषाय प्रावृत का मैं 15 अर्थाधिकारों में विभक्त 180 गाथाओं के द्वारा प्रतिपादन करता हूँ, इस प्रकार प्रतिज्ञा सूत्र को कहते हैं। उन्होंने स्वयं उसकी बात बताई है। हमेशा ग्रंथ का नाम लिखा जाता है, कितने पद वगैरह, देखो यहाँ जो 16,000 पद कहे हैं वो किस में थे? ओरिजिनल पेज्जपाहुड़ जिसको कहते हैं कषाय प्रावृत, ओरिजिनल 16,000 पदों का एक एक पद कितने अक्षरों का? 1634,83,07,888 का एक पद, और ऐसे 16,000 पदों का एक वो कषाय प्रावृत ओरिजिनल जो 10वें वस्तु में 3रा जो है पेज्जपाहुड़, उसमें से ये नया जो कषाय प्रावृत बनाया गुणधर भट्टारक ने, 180 गाथा लिखी उन्होंने और उसमें 15 अर्थाधिकार बनाए। 233 भी आता है और 180 भी आता है, उसका वर्णन आगे आएगा। तो ये अभी तक हमने जो पहली गाथा पढ़ी थी, गाथा सूत्र, पेज नंबर कहाँ पढ़ा था, 11 में या 9 में? 9 नंबर पे, वहां गाथा सूत्र कषाय प्रावृत का जो गुणधर भट्टारक ने गाथा सूत्र लिखा था वो वहां लिखा था, पेज नंबर 9। और यहाँ दूसरी गाथा ये 139 पेज पर है, गाथा 2। गाथा 1 9 नंबर पर। हम पहले गाथा पढ़ेंगे क्योंकि अभी प्रतिज्ञा सूत्र ने मैं क्या लिखने वाला हूँ कहने वाला हूँ ऐसा प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर, हम पढ़ेंगे उसको। गाहा सदे सीदे अथे पन्नर सधा विहत्तमी वोच्छामि सुत्त गाहा जय गाहा जम्यत्थमी। नीचे उसका अर्थ लिखा है, 15 प्रकार के अर्थाधिकारों में विभक्त पन्नरसधा विहत्तमी, अथे 180 गाथाओं में सदे असीदे, असीदे ने अस्सी और सदे ने शत, 180 गाथाओं में जितनी सूत्र गाथाएं हैं जिस अधिकार में आई है उनका प्रतिपादन करता हूँ। जई गाहा जम्मी अथम्मी, यानी जिस अर्थाधिकारा में जो गाथाएं आई है उनका वर्णन करूंगा, ऐसा बताते हैं। अब उसका इसके ऊपर जो जय धोला ठीका है उसको पढ़ेंगे। दो कोड़ा कोड़ी 61,57,292 करोड़ और 62,08,000 अक्षरों से उत्पन्न हुए 16,000 मध्यम पदों के द्वारा ये क्या किया 16,000 करने के लिए? हाँ, वो टोटल अक्षरों की उन्होंने संख्या बताई। हमने 1634 करोड़ देखा था ना, हाँ, तो इतने करोड़ कितने आए? देखो वहाँ 1634 करोड़ और आगे की संख्या थी, अब यहाँ करोड़ में ना, दो कोड़ा कोड़ी 61,57,292 करोड़ और फिर आगे जो कुछ है, इतने यानी 16,000 मध्यम पदों में इतने टोटल अक्षर है। इनके द्वारा इंद्रभूति गणधर देव ने जिस कषाय प्रावृत का प्रतिपादन किया, ये मूलभूत जो कषाय प्रावृत है ज्ञान प्रवाद में 10वें वस्तु में, तो कहते हैं ये किसने लिखा है, लिखा है ने, किसने रचना की? इंद्रभूति गौतम ने, गणधर ने। उस कषाय प्रावृत का मैंने ये कौन लिख रहे है? गुणधर आचार्य। 180 गाथाओं के द्वारा ही ज्ञान कराता हूँ, यानी वो सारा देखो कितना उसमें कॉन्सेंट्रेट है, दो गाथाएं तो अभी चली गई, तो उसमें सारा माल जो इतने 16,000 पदों के द्वारा बताया था उसको इसमें उन्होंने समा दिया। इस अर्थ के ज्ञापन करने के लिए गुणधर आचार्य ने गाहा सदे असीदे इस प्रकार पहली प्रतिज्ञा की है। विशेषार्थ, एक मध्यम पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं, इनसे 16,000 पदों के गुणित कर देने पर, ये तो अभी हमने जो देखा था ना, दो कोड़ा कोड़ी 61,57,292 करोड़, वहाँ रुकना अभी, फिर 62,08,000 अक्षर आ जाते हैं। इतने अक्षरों द्वारा इंद्रभूति गणधर ने मूल कषाय प्रावृत का प्रतिपादन किया था तथा इसी कषाय प्रावृत का गुणधर आचार्य ने 180 गाथाओं के द्वारा कथन किया है। ये 180 गाथाएं प्रमाण पद से 720 पद प्रमाण है। प्रमाण पद पहले तो कितने थे? मध्यम पद थे, 16,000 मध्यम पद थे। अब यहाँ कहते हैं यहाँ प्रमाण पद कितने हो जाएंगे? एक गाथा के चार होते हैं, तो ऐसे 720 पद प्रमाण है तथा इनमें संयुक्त और असंयुक्त कुल अक्षर 5,760 है। अंग प्रविष्ट श्रुत में इंद्रभूति गणधर ने अनेक अर्थाधिकारों के द्वारा कषाय प्रावृत का प्रतिपादन किया है। हमने देखा था एक एक प्रावृत के 24-24 अर्थाधिकार हो गए, तो मूल में तो उन्होंने इतने अर्थाधिकार किए हैं, परंतु मैं गुणधर आचार्य यहाँ पर उस कषाय प्रावृत का 15 अर्थाधिकारों के द्वारा ही प्रतिपादन करता हूँ, यह ज्ञान कराने के लिए गुणधर आचार्य ने अथे पन्नरसधा विहत्तम्मी यह दूसरी प्रतिज्ञा की है। इसमें भी इतनी इतनी गाथाओं के द्वारा ही एक एक अर्थाधिकार का प्रतिपादन करूंगा। इस अभिप्राय का ज्ञान कराने के लिए गुणधर आचार्य ने जम्मी अथम्मी जई गाहा हो होंती ताओ उच्छा में यह तीसरी प्रतिज्ञा की है। एक ही गाथा में ये तीनों प्रतिज्ञाएं हैं। इस प्रकार गुणधर भट्टारक की ये तीन प्रतिज्ञाएं हैं। अब आगे पूर्वोक्त गाथा सूत्र का अर्थ कहते हैं। गाहा सदे असीदे का अर्थ 180 गाथाएं लेना चाहिए। शंका, बहुत के लिए शत शब्द आता है, इसलिए उसमें एक वचन का निर्देश कैसे बन सकता है? नहीं, क्योंकि शत रूप से बहुत में भी एकत्व देखा जाता है। जैसे शत का एक वचन रूप से निर्देश करने में कोई इसलिए शत का एक वचन रूप से निर्देश करने में कोई आपत्ति नहीं है। विशेषार्थ, ये सख्येय हुए संख्येय करना। कहते संख्येय प्रधान और संख्यान प्रधान भेद से संख्या दो प्रकार की है। 20 से पहले 19 तक की संख्या संख्येय प्रधान है और 20 से लेकर आगे की संख्या संख्येय प्रधान है। हाँ, एक ही बात लिखी। और संख्यान प्रधान भी है, दोनों है। क्या कहते हैं? 19 तक की संख्या संख्येय प्रधान है और 20 से आगे संख्येय प्रधान भी है और संख्यान प्रधान भी है। अतः शत शब्द जब संख्येय प्रधान रहेगा तब 100 इस शब्द के द्वारा कहे जाने वाले पदार्थ पृथक पृथक ग्रहण किए जाएंगे, इसलिए बहुवचन प्रयोग होगा। और जब 100 पदार्थ शतरूप से ग्रहण किए जाएंगे तब एक वचन प्रयोग भी बन जाएगा। प्रकृत में इसी दृष्टि को सामने रखकर शत शब्द को गाहा सदे इस तरह एक वचन के द्वारा कहा है। वे 180 गाथाएं किस प्रकार की है ऐसा पूछने पर वे 180 गाथाएं 15 अर्थाधिकारों में विभक्त है इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। उन 180 गाथाओं में से जिस अधिकार में जितनी सूत्र गाथाएं पाई जाती है उन सूत्र गाथाओं का मैं गुणधर आचार्य कथन करता हूँ। इस सूत्र गाथा के तृतीय पाद में स्थित गाथा शब्द के साथ संबद्ध सूत्र शब्द को पीछे के अर्थात इसी सूत्र गाथा के चौथे पाद में स्थित गाथा शब्द में भी जोड़ लेना चाहिए। क्या कहते हैं? वहां गाथा लिखा है परंतु वो सूत्र गाथा ऐसा वहां समझना चाहिए। लिखा है ना, वोच्छामि सुत्त गाहा, मैं सूत्र गाथा बताता हूँ। जई गाहा जम्मी अथम्मी, और जो गाथा जिस अर्थ में है तो सूत्र गाथा के ही वहां अर्थ, वो सूत्र शब्द वहां भी समझना चाहिए, ऐसी बात बताते हैं। शंका, हाँ 67 नंबर की जो ये शंकाकार ने प्रस्तुत की है। सुत्तम गणहर कहियम तहेय पत्तेय बुद्ध कहियम च सुदके वलिना कहियम अभिन्न दस पूवी कहियम च। ये सूत्र किसको कहना ये बात बता रहे हैं। जो गणधर के द्वारा कहा गया है वह सूत्र है। उसी प्रकार जो प्रत्येक बुद्धों के द्वारा कहा गया है वह सूत्र है। ये प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ऐसा कुछ होता है के? नहीं, प्रत्येक बुद्ध वो स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध ऐसे दो हैं। ये प्रत्येक बुद्धों के द्वारा कहा गया वह सूत्र है तथा जो श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है वह सूत्र है और जो अभिन्न दस पूर्वियों के द्वारा कहा गया है वह सूत्र है। अभिन्न दस पूर्वी नहीं, दस पूर्वों का जिसको ज्ञान है वो अभिन्न दस पूर्वी कहलाते हैं। उनके द्वारा जो बताया है उसको सूत्र कहो, अब यहाँ जो गुणधर भट्टारक ने लिखा है कि मेरे सूत्र गाथाओं में लिखता हूँ, तो उसको सूत्र क्यों कहते हो? हाँ, यहाँ लिखा है सूत्र, शंका यहाँ आगे पूरी होती है। इस वचन के अनुसार ये 180 गाथाएं सूत्र नहीं हो सकती है, क्योंकि गुणधर भट्टारक न गणधर है, न प्रत्येक बुद्ध है, न श्रुत केवली है और न अभिन्न दशा पूर्वी ही है। उसका समाधान करो, नहीं, क्योंकि निर्दोषत्व, अभी सूत्र का और भी वर्णन कर रहे, अल्प अक्षरत्व और सहेतुकत्व रूप प्रमाणों के द्वारा गुणधर भट्टारक की गाथाओं की सूत्र के साथ समानता है, अर्थात गुणधर भट्टारक की गाथाएं निर्दोष है, अल्प अक्षर वाली है। ये सूत्र की विशेषता होती है, मिनिमम पॉसिबल अक्षरों में मैक्सिमम पॉसिबल उसमें अर्थ भरा हो, सहेतुक है, अतः वे सूत्र के समान है। इसलिए गुणधर आचार्य की गाथाओं में भी सूत्रत्व पाया जाता है। इस विषय का उपयोगी श्लोक देते हैं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतु मत्तथ्यम सूत्रमित्युच्यते बुधैः। जिसमें अल्प अक्षर हो, जो असंदिग्ध हो, संदिग्ध है अस्पष्ट, असंदिग्ध है स्पष्ट है, जिसमें सार अर्थात निचोड़ भर दिया हो, जिसका निर्णय गूढ़ हो, जो निर्दोष हो, संयुक्तिक हो और तथ्यभूत हो, उसे विद्वान जन सूत्र कहते हैं। अब यही रुकते हैं, अभी हम जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। लक्ष्मी देव।